بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 12 جولائی 2020 ہے. آج ہم آپ کی خدمت میں شوکی بردر سیریز کی کہانی انڈونیشیا کا ہوا ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کے مصنف اشتیاق احمد ہیں اور اس کے کل صفحات کی تعداد 148 ہے. آواز لبابہ حیدر کی ہے. یہ کتاب آپ کی خدمت میں قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے ہمارے نمبر 0306 7878222 پر یا ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org پر رابطہ کریں. پارٹ 1، صفحہ نمبر 7، سونے کے دانت والا. یہ اس روز کی بات ہے جب ہم نے سونے کے دانت والے کو دیکھا تھا. ہم شام کی سیر کر کے گھر میں داخل ہوئے تو ڈرائنگ روم سے باتیں کرنے کی آوازیں آئیں. آواز نئی بھی تھی اور عجیب بھی. ہمارے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ ایسے موقع پر کھڑے ہو ہی جایا کرتے تھے. میں نے اشفاق، اخلاق اور آفتاب کی طرف دیکھا اور انہوں نے میری طرف. پھر ہم دبے پاؤں ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف بڑھے. دروازہ بند تھا. اس میں تھوڑی سی درز پیدا کرنے کے لیے اشفاق نے اپنی ایک انگلی سے اس کو ہلکا سا ٹہوکا دیا، مگر اشفاق ٹھہرا لمبے قد کا مالک. اس کا ٹہوکا کچھ زیادہ لمبا ہو گیا اور دروازہ آدھا کھل گیا. دروازہ نہ صرف آدھا کھلا تھا بلکہ اپنی چرچراہٹ بھی اندر بیٹھنے والوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تھا. وہ لوگ چونک اٹھے اور ہم گھبرا گئے. ہم نے انہیں اور انہوں نے ہمیں دیکھا یوں جیسے ہم سب کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہوں. اندر ابا جان کے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے، لیکن یہ ایک صاحب کم از کم پاکستانی نہیں تھے، کسی اور ملک کے تھے. ہم اندازہ نہیں لگا سکے. ان کے نقش و نگار کچھ چینیوں سے ملتے تھے تو کچھ جاپانیوں سے، اور کہیں کہیں سے وہ ہندوستانی بھی نظر آتے تھے. ہم حیران تھے کہ انہیں کون سے ملک کا سمجھیں. ہمارے لیے دوسری حیران کن بات یہ تھی کہ غیر ملکی کا ہمارے ہاں کیا کام. وہ تو ڈرائنگ روم میں بیٹھے ابا جان سے باتیں کر رہے تھے کہ اشفاق کے ٹہوکے نے سب کچھ بگاڑ کے رکھ دیا. تم یہاں کیوں چلے آئے؟ جاؤ، جا کر اپنا کام کرو. ابا جان ہمیں دیکھ کر گھبرا گئے، جیسے کسی غیر ملکی سے مل کر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہوں. ہم نے حیران ہو کر انہیں دیکھا. مہمان بھی ہماری طرف دیکھنے لگا تھا اور اس نے اپنی بات درمیان میں ہی چھوڑ دی تھی. اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا کہ ہم گڑبڑا کے رہ گئے. ابا جان، وہ میں جی
جو کہنا ہے جلدی کہو.
جی، کہنا تو کچھ نہیں ہے، ڈرائنگ روم سے باتیں کرنے کی آواز آئی تو ہم ادھر چلے آئے. اخلاق نے جھجکے بغیر کہہ دیا.
ٹھیک ہے، اچھا کیا چلے آئے، اب چلے جاؤ.
ہمارا خیال تھا کہ وہ ہمیں اپنے مہمان سے ملوائیں گے، یا کم از کم مہمان ہی ہمارے بارے میں ان سے کوئی سوال کر بیٹھے گا، لیکن ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی. البتہ تیسری بات ضرور ہوئی، یعنی ہم مایوس ہو گئے. ساتھ ہی ہم پر جھلاہٹ کا دورہ بھی پڑ گیا. واپس مڑنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ آفتاب کی زبان چل نکلی. ابا جان، دراصل ہم اس لیے ادھر آ نکلے تھے کہ شاید مہمان کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہو.
نہیں، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے.
ابا جان جلدی سے بولے، کیا آپ ہمیں اپنے مہمان سے نہیں ملوائیں گے؟ اشفاق نے پوچھا.
تم چاروں کے حواس تو ٹھکانے پر ہیں، آج ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ میں کہتا ہوں جا کر آرام کرو، اور تم سوال پہ سوال کیے جا رہے ہو. ان کا تم سے یا تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، سمجھے؟ اب اگر تم نے کوئی سوال کیا تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گا.
بہت بہتر ابا جان، ہم اچھی طرح سمجھ گئے.
میں نے باادب ہو کر کہا. کیا سمجھ گئے؟
یہی کہ آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتے.
چلو یہی سمجھ لو.
ابا جان مسکرائے. لیکن ابا جان، گستاخی معاف، آخر ہم بھی آپ ہی کے بیٹے ہیں، ہمارا بھی آخر اس گھر پر حق ہے. اگر یہ آپ کے مہمان ہیں تو ہمارے بھی ہیں، اور ہم اتنے غیر مہذب نہیں کہ مہمان سے ملے بغیر ہی آرام کرنے کے لیے چل دیں. ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمیں ان سے ملوا دیں، اس کے بعد ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہاں نہیں رکیں گے. اخلاق کہتا چلا گیا. اس کے خاموش ہونے کے بعد مہمان نے انگریزی میں ابا جان سے سوال کیا، یہ بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اوہو، ضرور، اس میں حرج ہی کیا ہے، انہیں اندر بلائیے، میں ان سے ضرور ملوں گا. ہمیں یوں لگا جیسے وہ زبردستی مسکرایا ہو. ابا جان نے ہمیں قہر آلود نظروں سے گھورتے ہوئے اندر آنے کا اشارہ کیا. ہم ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہو گئے. ڈرتے ڈرتے اس لیے کہ کہیں ابا جان مہمان سے ملوانے کے بجائے خود ہی ہم سے ملانا شروع کر دیں. ان سے ملاقات کرتے ہوئے ہماری جان جاتی ہے. وہ مہمان سے تعارف کرواتے ہوئے بولے، یہ میرا سب سے بڑا بیٹا شوقی ہے، اور یہ اشفاق، اخلاق اور آفتاب ہیں. چاروں اسکول میں پڑھتے ہیں، بہت ذہین ہیں، اتنے کے بعض اوقات میرا دماغ تک چاٹ جاتے ہیں. اور یہ میرے دوست جکارتا ہیں.
جکارتا؟
ہاں، انڈونیشیا کے رہنے والے ہیں.
اوہو،
हमारा जी चाहा अब्बा जान से सवाल करें कि ये इंडोनेशिया से आपके पास क्या लेने आए हैं, मगर हम पूछ न पाए। हम मिस्टर जिकार्ता से हाथ मिलाकर फारिग हुए तो अब्बा जान ने इशारा किया कि अब हम जा सकते हैं। हम मेहमान के आगे अदब से झुके तो वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया और उस वक्त हमने देखा कि उसका सामने का एक दांत सोने का था। हम परेशान हो गए थे, मेहमान में कोई ऐसी बात जरूर थी जो हमें रह रहकर फिक्रमंद कर रही थी। अपने कमरे में जाने से पहले हमने अम्मी जान से मेहमान के बारे में कुछ पूछ लेना मुनासिब समझा। वो बावर्ची खाने में शाम का खाना तैयार करने में मसरूफ थे। अम्मी जान, क्या आप हमें इस मेहमान के बारे में कुछ बता सकती हैं? तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे अब्बा जान घर आए थे। उनके आने के सिर्फ चंद मिनट बाद ही किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। वो दरवाजे पे गए तो वहां ये आदमी खड़ा था, मैं अंदर थी। उस वक्त से लेकर अब तक वो मेहमान के साथ ड्राइंग रूम में ही बैठे हुए। मैंने दो एक बार दरवाजे पर जाकर चाय वगैरह के लिए भी पूछा, मगर उन्होंने कहा कि किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। हम इतना और जानते हैं कि मेहमान इंडोनेशिया का रहने वाला है और उसका नाम जिकार्ता है। इससे भी ज्यादा हमें कुछ मालूम नहीं, लेकिन दाल में कुछ काला जरूर है, अशफाक ने कहा, और हमें उसी काले की तलाश है, इखलाक बोला। वैसे अम्मी, अब्बा जान ने कभी अपने किसी इंडोनेशिया दोस्त के बारे में आपको नहीं बताया? आफताब ने पूछा। नहीं, वो अपने दोस्तों के बारे में कभी कुछ नहीं बताते। तुम फिक्र ना करो, जाओ और जाके स्कूल का काम करो। हम अपने कमरे में चले आए। स्कूल का काम करते हुए भी हम मेहमान के बारे में ही बातें करते रहे। शाम का खाना हमने अपने कमरे में ही खाया क्योंकि अब्बा जान ने मेहमान को छोड़कर आने से इनकार कर दिया था। मेहमान को भूख नहीं थी और अब्बा जान भी शायद मेहमान की वजह से भूखे रहना चाहते थे। उसके बाद पढ़ते पढ़ते और मेहमान के बारे में बातें करते करते ना जाने किस वक्त हम सो गए। फिर अचानक मेरी आंख खुल गई। कोई मुझे शाने से पकड़कर झंझोड़ रहा था। जीरो के बल्ब की रोशनी में मैंने देखा, वो इखलाक था। क्या बात है भाईजान, जरा सुनिए, ये आवाजें कैसी आ रही हैं? उसने कपकपाती आवाज में कहा। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। ड्राइंग रूम की तरफ से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। पहले कुर्सी घसीटने की आवाज आई, फिर धप धप होने लगी। तीसरी आवाजें हल्की सी चीख की थी। मैं घबरा गया कि ये क्या हो रहा है। जल्दी जल्दी अशफाक और आफ्ताब को भी उठाया। ड्राइंग रूम से आवाजें आना अब भी जारी था। आखिर हम अपने कमरे से निकलकर दबे पांव ड्राइंग रूम की तरफ बढ़े। उसी वक्त हमने अम्मी जान को अपने कमरे से निकलते देखा। हम रुक गए और जब वो पास आई तो मैंने सरगोशी की, आपने ये आवाजें सुनी? हाँ भाई, मेरा तो दिल हौल रहा है, ना जाने क्या मामला है, ऐसा मालूम होता है जैसे कुछ होने वाला हो, उन्होंने थर थर कांपते हुए कहा। आइए ड्राइंग रूम में चलकर देखें, मैंने कहा और हम पांचों आगे बढ़े। एन उसी वक्त आवाजों का सिलसिला रुक गया। मौत जैसी खामोशी छा गई। हमें यूं लगा जैसे हम वहम का शिकार हो गए हों। आखिर हम दरवाजे तक पहुंच गए। अशफाक ने हाथ का दबाव डालकर देखा, दरवाजा अंदर से बंद था। हमने दरवाजे से कान लगा दिए लेकिन अंदर से कोई हल्की सी आवाज भी सुनाई नहीं दी। हैरत के मारे हमारा बुरा हाल था। मैंने आओ देखा न ताओ दरवाजा जोर से खटखटा दिया। अब्बा जान, दरवाजा खोलिए, इखलाक चिल्लाया। कोई जवाब ना मिलने पर हम बेचैन हो गए। आफ्ताब ने पूरी कुव्वत से दरवाजा धड़धड़ा दिया, उस पर भी अब्बा जान की तरफ से कोई जवाब ना मिला। हमने घबरा कर एक दूसरे की तरफ देखा, कहीं वो आवाजें किसी और कमरे से तो नहीं आ रही थी। मेरे मुंह से निकला, लेकिन ड्राइंग रूम का दरवाजा तो अंदर से बंद है, जिसका मतलब है कि अब्बा जान और मेहमान ड्राइंग रूम में ही है, तो फिर अंदर से जवाब क्यों नहीं मिलता? आखिर ये चक्कर क्या है सारा? आफ्ताब ने परेशान होकर कहा, क्यों ना हम पहले पूरे मकान की तलाशी ले लें? अम्मी जान ने मशवरा दिया, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आवाजें इसी कमरे से आ रही थी। इस सूरत में हमें वक्त जाया करने की जरूरत क्या है? मैं तो कहता हूँ दरवाजा फौरन तोड़ देना चाहिए, मैंने कहा। ये दरवाजा हमसे नहीं टूटेगा बेटा, अलबत्ता हम खिड़की जरूर तोड़ सकते हैं। तो फिर आइए ना, ना जाने अंदर क्या गड़बड़ है, आखिर अब्बा जान जवाब क्यों नहीं देते? आफ्ताब ने कहा। हम सब खिड़की के सामने आए और उसे धक्का दिया। खिड़की हिली जरूर लेकिन टूटी नहीं। हम एक साथ पीछे हटे और दौड़ते हुए खिड़की की तरफ आए। 10 हाथ एक साथ खिड़की के पटों से टकराए और उसके कब्जे उखड़ गए। ड्राइंग रूम में अंधेरा था लेकिन यह हमारा घर था, हम अंधेरे में भी चल फिर सकते थे। सबसे पहले मैंने खिड़की फलांगी, फिर फर्श पर छलांग लगा दी और स्विच की तरफ दौड़ा। इतने में इखलाक भी कूद चुका था, उसके साथ ही मैं स्विच तक पहुंच गया। इधर मैंने स्विच दबाया, उधर अशफाक ने खिड़की फलांगी, लेकिन ये क्या, स्विच दबने की आवाज कमरे में जरूर गूंजी लेकिन बल्ब रोशन नहीं हुआ। अब्बा जान, क्या आप कमरे में हैं? अशफाक ने बौखलाकर पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। मैं हैरान था कि स्विच दबाने पर बल्ब क्यों नहीं जला। उसी वक्त इखलाक ने पूछा, भाईजान आपने स्विच दबाया था? हाँ हाँ दबाया था, लेकिन बल्ब रोशन नहीं हुआ। तो फिर खुदा करी जल्दी से कमरे का दरवाजा खोल दीजिए ताकि बरामदे के बल्ब की रोशनी अंदर आ सके।
ठीक है, अम्मी बोली जो अभी अभी अंदर कूदी थी। हम सब अंधेरे में खड़े थे और एक दूसरे को नजर नहीं आ रहे थे। अचानक अंधेरे में कोई धड़ाम से गिरा, साथ ही एक चीख गूंजी, फिर अशफाक की कपकपाती आवाज हमारे कानों से टकराई।
अरे बाप रे, ये मैं, क्या हुआ, क्या हुआ अशफाक, क्या बात है?
अम्मी ने पूछा।
यहाँ यहाँ फर्श पे कोई पड़ा है, मैं इसके ऊपर गिर पड़ा था।
अशफाक की आवाज लरज रही थी।
अरे बाप रे,
मेरे मुंह से निकला। बदहवासी ने हमें अपनी लपेट में ले लिया था। ऐसे में हम एक साथ दरवाजे की तरफ भागे और एक दूसरे से टकरा गए। मेरा सर अशफाक के सीने से लगा। अशफाक लड़खड़ाया तो इखलाक से गड़बड़ हो गया। आफताब और अम्मी एक साथ दरवाजे पर पहुंचे और उनके कंधे एक दूसरे से टकरा गए। अम्मी जान ने हवास बहाल रखे और दरवाजा खोल दिया। बरामदे में जलने वाले जीरो के बल्ब की रोशनी कमरे में आई, लेकिन कमरे को रोशन नहीं कर सकी। मध्यम मध्यम रोशनी में हमने उस इंसानी ढेर को देखा जो औंधे मुंह फर्श पर पड़ा था। पहली नजर में हम जान न सके कि वो कौन है। हमारे दिल बुरी तरह धड़क रहे थे और हाथ पैर कांप रहे थे। हम में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि इस औंधे मुंह पड़े हुए जिस्म को सीधा कर सकते। हमने बल्ब की तरफ देखा, वो टूट चुका था, उसके टुकड़े करीब ही पड़े थे। अचानक मैंने आफ्ताब से कहा,
आफ्ताब जल्दी करो, टेबल लैंप उठाकर लाओ।
आफ्ताब दौड़ता हुआ चला गया और हम बेताबी से उसकी वापसी का इंतजार करने लगे। एक मिनट तक पत्थर के बुतों की तरह खड़े रहने के बाद आफ्ताब दौड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। अशफाक ने लैंप आफ्ताब के हाथ से लैंप झपट कर लिया और उसका स्विच प्लग में लगा दिया। दूसरे ही लम्हे कमरा रोशन हो गया और हमने देखा औंधे मुंह पड़ा हुआ शख्स जिकारता के अलावा कोई नहीं था। 100% यकीन करने के लिए मैंने आगे बढ़कर उसे सीधा किया। दफातन हम सबकी चीखों से ड्राइंग रूम गूंज उठा। वो शख्स जिसका नाम जिकारता था और जिसका एक दांत सोने का था, मर चुका था। उसका जिस्म पत्थर की तरह सख्त और ठंडा हो चुका था, लेकिन उसके जिस्म पर कोई जख्म नहीं था और कमरे में अब्बा जान का कहीं नामो निशान नहीं था। पुलिस। हम थर थर कांपने लगे, हमारे होश उड़ गए थे, इसलिए उस वक्त की सबसे अजीब बात की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया। चंद मिनट तक थर थर कांपने के बाद जब कहीं जाकर हम इस काबिल हुए कि मामले पर कुछ गौर करते, तो सबसे पहले इखलाक ने तकरीबन चिल्लाकर कहा,
अब्बा जान आप कहाँ हैं?
उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर वापस लौट आई। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और उस वक्त हमें इस अजीब तरीन बात का ख्याल आया। बात यह थी कि कमरा तो अंदर से बिल्कुल बंद था, फिर अब्बा जान कहाँ गए? अगर वो बाहर थे तो मेहमान को किसने मारा? क्या उसने कमरा अंदर से बंद करके खुदकुशी कर ली? लेकिन नहीं, इस तरह कैसे खुदकुशी की जा सकती है? खुदकुशी करने वाला बदनसीब तो अपने गले में फंदा डालकर लटक जाता है या फिर पिस्तौल की गोली कनपट्टी पर मार लेता है। पर यहां तो मामला ही दूसरा था। जिकारता औंधे मुंह पड़ा था, उसके जिस्म पर जख्म का कोई निशान ना था, ना ही फर्श पे खून मौजूद था। अब सवाल यह था कि वो मरा कैसे और अब्बा जान कहाँ हैं? अगर जिकारता को अब्बा जान ने हलाक किया है तो वो कमरा अंदर से बंद करके कैसे गायब हो सकते हैं? ये थे वो सवाल जिन्होंने हमें चकरा के रख दिया था। दूसरी तरफ हमें इस बात की भी फिक्र थी कि अगर अब्बा जान का ये काम है तो हम अनगिनत मुसीबतों में घिर जाएंगे। पुलिस अब्बा जान को छोड़ने वाली कहाँ थी? पुलिस के ख्याल से हम कांप कर रह गए, लेकिन अब पुलिस को फोन करने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। अचानक मुझे ख्याल आया,
ओहो हमें सदर दरवाजा देखना चाहिए। अगर वो अंदर से खुला है तो इसका मतलब ये होगा कि अब्बा जान बाहर जा चुके हैं। ताके 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 क्या? अम्मी ने घबरा कर पूछा। ताके पुलिस उन्हें गिरफ्तार ना कर सके ना,
अशफाक ने कहा। उसके मुंह पर हवाएं उड़ रही थी।
नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, वो इतने बुजदिल नहीं है। अगर ये काम उन्होंने किया है तो वो भागने की कोशिश हरगिज नहीं करेंगे।
खैर, हमें पहले सदर दरवाजा देख लेना चाहिए, मैंने कहा और हम सब तेज तेज चलते हुए ड्राइंग रूम से निकल आए। हम एक साथ सदर दरवाजे पर पहुंचे और फिर हम सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सदर दरवाजा अंदर से बंद था और हमारे घर से बाहर निकलने का सिर्फ एक यही रास्ता था। हमें चक्कर पर चक्कर आने लगे।
तो क्या अब्बा जान घर में ही है?
मेरे मुंह से निकला। इसके सिवा और क्या कहा जा सकता है? आफ्ताब बोला। लेकिन वो घर में किस जगह है? अम्मी ने कहा। आओ उन्हें तलाश करें, मैंने कहा और हमने जल्दी जल्दी पूरा घर खंगाल डाला। पर अब्बा जान को ना मिलना था ना मिले।
अब क्या करें?
हैरत है, दरवाजा तो अंदर से बंद है, फिर अब्बा जान बाहर कैसे जा सकते हैं? जरूर उन्हें काला इल्म आता होगा, वरना वो दरवाजा खोले बगैर बाहर नहीं जा सकते थे, इखलाक ने कहा। या फिर शायद उनके पास कोई सुलेमानी टोपी होगी। ये ऐसी बातों को सोचने का वक्त नहीं है, सोचना यह है कि अब हम करें क्या। हमारे घर में इस वक्त एक लाश मौजूद है।
ओ हाँ, ये भी ठीक है।
अब हम पुलिस को फोन करने के सिवा और कर भी क्या सकते हैं?
गोया हम खुद ही पुलिस को दावत दें कि वो आकर अब्बा जान को गिरफ्तार कर ले। इखलाक ने गमजदा लहजे में कहा, इन हालात में हम कुछ और कर भी नहीं सकते। तहम पुलिस को बुलाने का मकसद ये नहीं होगा कि हम अब्बा जान को गिरफ्तार कराना चाहते हैं। अब्बा जान तो यहाँ मौजूद ही नहीं है। अब इस मसले को सिर्फ पुलिस ही हल कर सकती है। हमारी तो अकलें चौपट होकर रह गई हैं। जहां तक मेरा ख्याल है, अब्बा जान ने इस शख्स को बिला वजह हलाक नहीं किया। उसकी जरूर कोई वजह होगी, मैंने लंबी चौड़ी तकरीर करते हुए कहा। इस सूरत में उन्हें गायब होने की क्या जरूरत थी? आफताब ने सवाल उठाया। इस सवाल का जवाब तो अब्बा जान ही दे सकते हैं। तो फिर ठीक है, चलो फोन करते हैं, अल्लाह मालिक है, अम्मी ने पुरसकून आवाज में कहा। हम सब बोझल कदम उठाते हुए बरामदे में आए। फोन करने की जिम्मेदारी मैंने अशफाक पर डाली। उसने कहा भी कि पुलिस को फोन करते हुए उसे डर लगता है, लेकिन जब मैंने उसे घूर कर देखा तो उसने झट रिसीवर उठाया और अपने इलाके के थाने के नंबर डायल करने लगा। दूसरी तरफ से किसी ने फौरन ही कहा, हेलो, ये पुलिस स्टेशन वहदत आबाद है। शुक्रिया जनाब, अशफाक ने बौखला कर कहा। क्या मतलब? दूसरी तरफ से हैरत ज़दा आवाज में कहा गया। हम सब फोन के पास कान लगाए खड़े थे। हमने अशफाक को इस बुरी तरह गड़बड़ाते देखा तो पेचताप खा गए। मैंने उसे घूर कर इशारों में कहा, ढंग से बात करो। जी, दरअसल बात ढंग की यह है कि ये क्या बकवास है, कौन बदतमीज बोल रहा है? जी, मेरा नाम अशफाक है, हमारे घर में कत्ल हो गया है। क्या कहा, कत्ल हो गया है? तुम होश में तो हो? जी हाँ, अगर मैं होश में ना होता तो फोन कैसे करता? अपना पता लिखवाइए। अशफाक ने घर का पता नोट करवाया। दूसरी तरफ से कहकर सिलसिला बंद कर दिया गया कि हम पहुंच रहे हैं, किसी चीज को हाथ ना लगाया जाए, लाश वाले कमरे को बंद कर दिया जाए। अशफाक ने रिसीवर रख दिया। हम सब सर झुकाए बाहर निकले और पुलिस की हिदायत के मुताबिक कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। अब हम बरामदे में खड़े पुलिस का इंतजार कर रहे थे। हमारे दिल धक धक कर रहे थे क्योंकि हमारे ड्राइंग रूम में एक लाश मौजूद थी और अब्बा जान गायब थे। हमारी जिंदगी में इससे ज्यादा अजीब दिन कभी नहीं आया था। अचानक दरवाजे की घंटी बज उठी। हमने जब से होश संभाला, ये पहला मौका है कि पुलिस हमारे घर में दाखिल हुई। इससे पहले हमें कभी पुलिस से वास्ता नहीं पड़ा था। अब हम आपको ये पुरस्रार और हैरतअंगेज दास्तान सुनाने बैठे हैं तो ये भी बताते चलें कि हमारे वालिद चमड़े के बहुत बड़े ताजर हैं। उनका नाम मुश्ताक अहमद खान है। अल्लाह ताला ने हमें हर नेमत से नवाजा है, किसी चीज की कमी नहीं। इस वाक़े से पहले हमने हमेशा पुरसकून वक्त गुजारा और कभी रंज, गम और परेशानी का मुंह नहीं देखा। ये वाक़या जो पेश आया तो हमें यूं लगा जैसे अचानक हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। हमें यह भी मालूम ना था कि पुलिस हमसे कैसा सुलूक करेगी। घंटी की आवाज सुनकर हम चौंक उठे और दरवाजे पर पहुंच गए। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। एक थानेदार चार कांस्टेबलों के साथ खड़ा था। शायद वो जीप से उतर ही थे क्योंकि गली में एक जीप भी खड़ी दिखाई दे रही थी। आप में से अशफाक किसका नाम है? थानेदार ने कहा। जी, मेरा। फोन आपने ही किया था? जी हाँ। आपके घर में कौन कत्ल हुआ है, किसने कत्ल किया है और क्यों किया है, एक सांस में बताइए। जी, हमें नहीं मालूम कि वो कौन है और उसे किसने कत्ल किया है, सिर्फ उसका नाम जानते हैं। ये क्या बात हुई? जी, हमारा अपना भी ये ख्याल है कि ये कोई बात नहीं हुई, अशफाक ने मिसमिन्नी सूरत बनाकर कहा। आपका दिमाग तो ठीक है बेगम साहिबा, आप बताइए क्या माजरा है। शायद हालात ने आप लोगों को बदहवास कर दिया है, इसलिए सही से बात नहीं बता पा रहे आप लोग। थानेदार के लहजे में सख्ती के बाद फौरन नरमी आ गई और हमने उसे हैरान होकर देखा, क्योंकि हमने तो सुना था कि थानेदार किस्म के लोग कभी किसी से नरमी से बात नहीं करते। मेरा बेटा ठीक कह रहा है जनाब, आप अंदर चलकर लाश का मुआयना कर लें, उसके बाद हम आपको तफसील से सारी बात बता सकेंगे। अच्छा, चलिए। हम सब ड्राइंग रूम में आ गए। थानेदार ने लाश देखकर एक लंबा सा सांस लिया, फिर झुककर उसका मुआयना करने लगा। उसने इर्द गिर्द की चीजों को भी देखा, फिर लाश की नब्ज टटोलते हुए बोला, क्या ये शख्स वाकई मर चुका है? जी, हमारा तो यही ख्याल है, आफताब के मुंह से निकला। लेकिन इसके जिस्म पर जख्म का तो कोई निशान नहीं और ना ही गला घोटने के आसार हैं। इस बारे में हम क्या कह सकते हैं कि ये कैसे मरा, हम तो ये जानते हैं कि ये मर चुका है, इखलाक ने घबरा कर कहा। ठीक है, अच्छा ये बताइए, कमरे की किसी चीज को छेड़ा तो नहीं गया? जी, सिर्फ एक चीज को छेड़ा गया है, मैंने डरते डरते कहा। मगर क्यों, मैंने मना किया था ना? हम आपकी हिदायत से पहले ही छेड़ चुके थे क्योंकि उसके बगैर चारा नहीं था। वो क्या चीज है जिसे आपने छेड़ा है?
जी, लाश।
क्या कहा, आपने लाश को हिला जुलाया है? थानेदार ने घबरा कर कहा।
जी हाँ, क्योंकि ये औंधे मुंह पड़ी थी, हमने ये देखने के लिए इसे सीधा किया कि देखे तो सही ये है कौन।
ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। खैर, आप लोग उसे इसी तरह औंधा कर दें जिस तरह पहले पड़ी थी, जी क्या मतलब? मैंने चौंक कर कहा, इस तरह हमें तफ्तीश में मदद मिलेगी। हमने थानेदार के हुक्म की तामील की। उसके बाद उसने हर चीज का जायजा लिया, अपनी नोटबुक में कुछ लिखा और फिर हमारी तरफ मुड़ा। हाँ, अब वाकयात बताइए। हमने चंद सेकंड एक दूसरे की तरफ देखने में जाया किए कि कौन उसको सारे वाकयात सुनाए। आखिर अम्मी जान ने इस काम का बेड़ा उठाया। उन्होंने तफसील से एक एक बात बताई। अचानक थानेदार चिल्ला उठा, क्या ये कैसे हो सकता है? नहीं, आप अपने शौहर को बचाने के लिए झूठ बोल रही हैं। क्या मतलब? अम्मी जान बौखला उठी, ये कैसे हो सकता है भाई कि कमरा अंदर से बंद था और लाश अंदर पड़ी थी। उसे जिस किसी ने भी कत्ल किया है वो जरूर कमरे के अंदर रहा होगा, ख्वाह आपके शौहर हो या कोई और, उसके बाद वो निकल भागा होगा। यकीन कीजिए थानेदार साहब, कमरा अंदर से बंद था। ना सिर्फ ये बल्कि बाहर से भी नहीं, अंदर से बंद था। ये क्या बात हुई? यकना शुद्ध दोषुद्ध, बाहर से भी दरवाजा बंद था तो फिर आपके शौहर कहाँ चले गए? क्या वो पड़ लगाकर उड़ गए? हम तो खुद चक्कर पे चक्कर खा रहे हैं। आप भी तो सोचिए कि लाश के जिस्म पर जख्म का कोई निशान नहीं है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अब्बा जान मेहमान को कहीं छोड़कर बाहर निकल गए हो और रात होने की वजह से उन्होंने मेहमान से दरख्वास्त की हो कि वो मकान का और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर ले? मैंने ख्याल पेश किया और उसके बाद मेहमान औंधे मुंह फर्श पर गिरा और पट से मर गया। थानेदार ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ हो सकता उसका हार्ट फेल हो गया हो, आखिर लोग मर भी तो जाते हैं इसी तरह। हो सकता है मेहमान दिल का मरीज हो, अब्बा जान के जाने के बाद उस पर दिल का दौरा पड़ा हो और उसने उठकर दरवाजे की तरफ आने की कोशिश की हो और इस कोशिश में वो खिड़की और कुर्सी और मेज से भी टकराया हो, फिर दरवाजे के पास पहुंचने से पहले ही उसकी रूह परवास कर गई हो। क्या ये सब कुछ नहीं हो सकता? हाँ होने को तो हो सकता है, लेकिन मैं ऐसी बातें फर्ज नहीं किया करता जब तक लाश का पोस्टमार्टम नहीं हो जाता। इस वक्त तक कोई राय कायम करना मुश्किल है। अगर आपके वालिद मौजूद होते तो फिर इस रास पर से पर्दा उठ सकता था। खैर, अब हम लाश को लिए जाएंगे। आप इस शहर से बाहर नहीं जा सकते। अगर आपके वालिद वापस आ जाएं तो फौरन मुझे इत्तला दें। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलने के बाद मैं फिर आऊंगा। जी अच्छा, मगर थानेदार साहब एक बात तो रह गई है। मुझे कुछ ख्याल आया। वो क्या? शायद इस बात का ताल्लुक इस वाक़े से ना हो, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल मुझसे बार बार कह रहा है कि वो बात मैं आपको बता दूं। जरूर बताएं, बाज़ औक़ात दिल बिल्कुल सही कहता है। थानेदार पहली मर्तबा मुस्कुराया। बात यह है जनाब कि इस मुर्दा शख्स का एक दांत सोने का है और ये इंडोनेशिया का रहने वाला है। एकदम थानेदार के मुंह से निकला, जी हाँ ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। नहीं, थानेदार ने चीख कर कहा। हमने देखा कि उसका पूरा जिस्म कपकपा रहा था, आंखों से बेपना खौफ झांक रहा था। हम फटी फटी आंखों से उसे तकने लगे। हम सोच रहे थे आखिर थानेदार को क्या हो गया। हमने सोने के दांत का तो जिक्र किया था, हाथी के दांत का तो नाम नहीं लिया था, लेकिन हम चूंकि अब्बा जान की वजह से परेशान थे इसलिए उसे कुछ भी ना पूछ सके। दूसरी तरफ थानेदार अभी तक पत्थर का बुत बना खड़ा था। सोने के दो दांत। जब हम हैरत के दरिया से बाहर निकले तो थानेदार लाश लेकर जा चुका था। हम उससे यह भी ना पूछ सके कि सोने के दांत में आखिर ऐसी क्या बात थी कि वो कपकपा उठा था। उसके जाने के बाद भी हम बहुत देर तक बातें करते रहे। इन हालात में नींद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। हमारे जहनों में सबसे बड़ा सवाल यही कुलबुला रहा था कि आखिर अब्बा जान कहाँ गए, फिर ये कि उन्होंने जयकार्ता को क्यों हलाक किया, और अगर हलाक कर ही बैठे थे तो बंद कमरे और बंद मकान से गायब किस तरह हो गए। अचानक मुझे ख्याल आया, क्यों ना हम कमरे का दरवाजा बंद करके उसे खोले बगैर बाहर निकलने की कोशिश करें। क्या मतलब? ये कैसे हो सकता है? इखलाक ने चौंक कर कहा, आखिर अब्बा जान भी तो गए हैं ना। खुदा जाने क्या चक्कर है, वो किस तरह गए हैं, हम क्या कह सकते हैं। अम्मी जान बोली, फिर भी अम्मी जान तज्जिया करने में हर्जी क्या है। चलो ठीक है भाई, अब नींद तो आने से रही, ये भी करके देख लेते हैं, उन्होंने कहा। और हम एक बार फिर ड्राइंग रूम में आए। उसके बाद पूरे कमरे का जायजा लिया। दरवाजे और खिड़की के अलावा कमरे में एक रोशनदान भी था। एक तो वो ऊंचा बहुत था, दूसरे इतना छोटा था कि कोई बच्चा भी उसमें से मुश्किल निकल सकता था, जबकि हमारे अब्बा जान खुदा के फजलो करम से बहुत लंबे चौड़े हैं। कम अज कम वो उस रोशनदान से तो बाहर नहीं गए, अशफाक ने कहा। तो फिर कैसे गए? यही तो सोचना है। ताला भी दरवाजे में अंदर से नहीं लगा हुआ कि उसे बाहर से भी बंद किया जा सके और अंदर से भी। जब हम खिड़की तोड़कर अंदर आए थे तो दरवाजे की चटखनी लगी हुई थी। इसका मतलब यह है कि अब्बा जान जरूर कमरे से बाहर इस हालत में गए हैं कि जिकारता जिंदा था, उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया होगा। मैंने कहा, लेकिन बाहर का दरवाजा भी तो बंद था और घर से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता भी कोई नहीं है। आफताब बोला, अभी तुम ये नहीं कह सकते, हमने अभी इस नजरिए से इस मकान का जायजा नहीं लिया। अम्मी जान बोली, लेकिन अम्मी जान थानेदार साहब तो जायजा ले चुके हैं, हम अपना इत्मीनान करके ही इस नतीजे पर पहुंचेंगे। मैंने कहा और कमरे से बाहर निकल आया। बाहर का दरवाजा पहले ही बंद था, इसलिए हमने इधर उधर घूम फिर कर बाहर निकलने के रास्ते का जायजा लेना शुरू किया। घर में जितनी भी खिड़कियां थी सब घर के अंदर ही खुलती थी। अब हमने छत का रुख किया। अगरचे जब से हम पैदा हुए थे इसी घर में रह रहे थे कि यह हमारे अब्बा जान का जाती मकान था, फिर भी हमने आज तक इस ख्याल से इसका जायजा कभी नहीं लिया था कि बाहर का दरवाजा अंदर से बंद होने की सूरत में घर से बाहर कैसे निकला जा सकता है। इसलिए हम ऐसा करने पर मजबूर थे। हम छत पर पहुंचे, उसकी मंडेरों पर झुक झुक कर देखा। बारिश के पानी के लिए एक पड़नाला मकान के पिछले हिस्से में लगा हुआ था, लेकिन ये टीन का था। दूसरे वो मुद्दा तो पुराना होने के बायस बहुत कमजोर भी था, उसके जरिए किसी भारी भरकम आदमी का नीचे उतरना नामुमकिन था, बल्कि वो तो हम में से किसी का वजन भी नहीं सहार सकता था। अगर हम इस किस्म की कोशिश करके देखते तो जरूर धड़ाम से पड़नाले समेत नीचे जा गिरते। अब ये बात साबित हो चुकी है कि मकान से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तो फिर अब्बा जान जरूर बाहर के रास्ते से ही दरवाजे से बाहर गए होंगे। उनके जाने के बाद जिकारता ने दरवाजा अंदर से बंद किया होगा और फिर ड्राइंग रूम का दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया होगा, अशफाक ने कहा। पर वो मर कैसे गया? अब यही ख्याल सही मालूम होता है कि उसका हार्ट फेल हुआ है, अम्मी जान बोली। हाँ, इसके सिवा और हम कह भी क्या सकते हैं? तो फिर अब्बा जान जरूर सुबह तक वापस आ जाएंगे, शायद किसी बहुत जरूरी काम से गए होंगे। हमें तो यह भी नहीं मालूम कि अब्बा जान और जिकारता के ताल्लुकात किस किस्म के हैं, ना मालूम उनके दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, क्या बातें तय हुई, किस जरूरत के तहत अब्बा जान को घर से बाहर जाना पड़ा। ये सब बातें अब्बा जान ही हमें बताएंगे। तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि वो कातिल नहीं है? इखलाक ने खुश होकर कहा। आए और क्या, अम्मी जान चाहकी, और हमारे जहनों से बोझ उतरता महसूस हुआ। ऐन उसी वक्त दरवाजे की घंटी बज उठी। लो, शायद अब्बा जान आ गए, आफताब ने उछल कर कहा। हम सब जल्दी जल्दी नीचे उतर आए और बाहर के दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। इखलाक ने तेजी से दरवाजा खोलते हुए कहा, अब्बा जान आप? लेकिन उसके अल्फाज दरमियान में ही रह गए। दरवाजे पर अब्बा जान नहीं, कोई और शख्स खड़ा था। उसकी शक्ल सूरत जिकारता से मिलती जुलती थी। उसके हाथ में सया दस्ते वाला एक लंबा सा चाकू था और चेहरे पर बेरहम मुस्कुराहट नाच रही थी। मैं तुम्हारे घर की तलाशी लूंगा, अगर तुमने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो ये चाकू तुमसे निमट लेगा, चलो मेरे आगे आगे, उसने टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा। हम बदहवास होकर उसके आगे आगे चलने लगे। सोच रहे थे कि ये नई मुसीबत क्या नाजिल हो गई है। अभी अब्बा जान का सुराग भी नहीं मिला था कि ये साहब आदम के, ना जाने ये कौन है और क्या चाहता है, शायद जिकारता का साथी है। वो एक एक कमरे की तलाशी लेता फिर रहा था। उससे पहले वो बैरूनी दरवाजे को अंदर से बंद करके उसमें एक अदद ताला लगा चुका था और ये ताला उसकी जेब से बरामद हुआ था। तमाम कमरे देखने के बाद वो छत पर पहुंचा, लेकिन उसे जिस चीज की तलाश थी वो उसे नहीं मिली। आखिर वो फिर नीचे आ गया और हमें घूरते हुए बोला, तुमने अपने वालिद को कहाँ छुपा रखा है? क्या मतलब? मैं जानता हूँ तुम्हारा बाप मकान के अंदर ही कहीं छुपा हुआ है। जब जिकारता तुम्हारे मकान में दाखिल हुआ था, मैं उस वक्त से ही मकान के बाहर मौजूद रहा हूँ। जिकारता से मैंने कह दिया था कि अगर उसे मेरी मदद की जरूरत हो तो फौरन इशारा कर दे, लेकिन उसने इशारा नहीं किया। फिर पुलिस घर में दाखिल हुई और किसी की लाश लेकर निकल गई। मैं समझ गया ये जिकारता मारा गया है। इस पूरे अरसे में ये मकान मेरी नजरों में रहा है। अगर तुम्हारा वालिद घर से निकलता तो मैं उसे जरूर देख लेता। इसका साफ मतलब यह कि वो घर में ही कहीं मौजूद है। कहाँ है ये बात तुम लोग मुझे बताओगे। जिकारता का इंतकाम लिए बगैर मैं इस मुल्क से हरगिज नहीं जाऊंगा। ये लंबी चौड़ी तकरीर उसने अंग्रेजी में की थी, जो काफी हद तक हमारी समझ में आ गई थी, क्योंकि वो खुद में अंग्रेजी जुबान का माहिर नहीं था और अनाड़ी की अंग्रेजी अनाड़ी समझ लेते हैं। हमारी हैरत का पूछना क्या, उस वक्त तक हम भी ये ख्याल करते रहते कि शायद अब्बा जान घर से बाहर चले गए होंगे, लेकिन इस दूसरे गैर मुल्की का बयान सुनकर मालूम हुआ कि अब्बा जान घर से बाहर नहीं गए। तो फिर वो कहाँ थे? यही था वो सवाल जो हमें परेशान कर रहा था। आखिर मैंने कहा, देखो मिस्टर, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारा नाम क्या और तुम कौन हो। अपने अब्बा जान को हम भी पूरे मकान में तलाश कर चुके हैं और पुलिस इंस्पेक्टर भी। अब्बा जान को नन्ना मुन्ना खिलौना तो है नहीं कि जिन्हें हम कहीं छुपा लेते। हम तो खुद हैरान है कि वो चले कहाँ गए। अगर तुम्हारे बयान के मुताबिक वो घर से बाहर नहीं गए तो फिर इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है कि उन्हें जरूर कोई ऐसा इल्म आता है जिसकी मदद से वो हमारी नजरों से पोशीदा हो गए हैं। तुमने हिप्नोटिज्म के बारे में तो सुना ही होगा, हो सकता है इस किस्म का कोई जादू या मंत्र उन्हें आता हो। बहरहाल घर तुम्हारे सामने है, तलाशी ले लो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। ऐतराज तुम उस वक्त करेंगे जब तुम उन्हें तलाश कर लोगे और उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे। उस वक्त तुम देखोगे कि हम उनकी जान बचाने के लिए क्या कुछ करते हैं। ये तो तुम इसलिए कह रहे हो कि तुम मुझे जानते नहीं हो। जो लोग मुझे जानते हैं ना, वो मेरा नाम सुनकर थर थर कांपने लगते हैं।
तब तो तुम हमें अपना नाम हरगिज मत बताना, आफताब ने घबराकर कहा।
हाँ, क्योंकि फिलहाल हमारा थर थर कांपने का कोई इरादा नहीं, पहले ही हम थर थर कांप चुके हैं,
अशफाक ने कांपते हुए कहा।
बिल्कुल, ज्यादती किसी चीज की भी हो बुरी होती है।
इखलाक भला कब रुकने वाला था?
सुनो, लोग मुझे इंडोनेशिया का हवा कहते हैं, मेरा नाम जोफियानो है। तुम अपने मुल्क के किसी आला पुलिस अफसर के सामने नाम लेकर देखना, वो थर थर कांपने लगेगा।
ये कहकर वो कह कहे लगाने लगा। उसका मुंह पूरा खुला हुआ था और उस वक्त हमने देखा कि उसके सामने के दो दांत सोने के हैं। यहां पर पार्ट वन खत्म होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट टू समाप्त फरमाएं।